जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Jai Sachinandana, Jaya Sachinandana. Jai Sachinandana, Jaya Sachinandana. Jai Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Patita Pavana Gaura Hari. Paramadayalu Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Radha Kunja Vihari Radha Kunja Vihari Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Om Vishnu Pada Paramhamsa Parivejikacharya Stotra Shatashita Sri Srimad Esi Bhakti Vedanta Swami Shira Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramhamsa Parivejikacharya Stotra Shatashita Sri Srimad भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीरनैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक 28। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयम् त्वामभद्राम सम्मताम्। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दन्ति लोकोऽयम् त्वामभद्र सम्मताम्। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दन्ति लोकोऽयम् त्वामभद्राम सम्मताम्।
निरूपितस्तुभ्यं रात्मसमाधिना नाभिनन्दन्ति लोकोऽयम् त्वामभद्राम सम्मताम्। मया निरूपितस्तुभ्यं
माताजी, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मया मेरे द्वारा निरूपित निश्चित किया गया तुभ्यम तुम्हारे लिए पति ही पति त्वा आत्मा मन के समाधिना ध्यान से न कभी नहीं अभिनंदती, स्वागत है लोक लोग अयम ये त्वाम तुमको अभद्राम अशुभ असम्मताम अस्वीकार्य। अनुवाद सभी दोहराइए। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य, काफी सोच विचार के बाद यवनराज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। कालकन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। इसलिए यवनराज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा रूप में कालकन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग सके। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिपे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। आनंदलीलामय विग्रहाय प्रेमाव दिव्यच्छविसुंदराय तस्मात् महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यईश्वरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राधे श्याम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से हम कुछ भगवान के गुणगान कर सके और इस श्लोक पर प्रभुपाद के जो विचार है उनके जो लीला है उसका हम वर्णन कर सकें। यवन राज ये हमारे इन्होंने काल कन्या मतलब जरा, बुढ़ापा को कोई स्वीकार करना चाहता है क्या? कोई है? कोई नहीं। एक ही व्यक्ति था जिन्होंने बुढ़ापे को स्वीकार किया, बाकी कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। इसीलिए बाल सफेद हो जाते हैं तो लोग काले कर लेते हैं कि भाई हम बूढ़े नहीं दिखना चाहिए, दांत गिर जाते हैं तो नया बत्ती सी लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ करके लोग जवान रहना चाहते, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है। परंतु पुरु महाराज थे, उन्होंने अपने जो पिताजी थे ययाति, उनका बुढ़ापा खुद होके स्वीकार किया और उसके बदले में उन्हें क्या हुआ, कृपा प्राप्त हुई, राज सिंहासन भी मिला। तो बुढ़ापा वैसे बुरी बात है, हर कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, परंतु इस काल कन्या को भी यवन राज जो ज्वर ताप का उदाहरण है, ये दोनों ने मिलके उन्होंने उसको भी अपने भगवान की सेवाओं में लगाना चाहा। जैसे पीछे के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि उन्होंने इसको भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहा। तो बुढ़ापा भी यदि है तो उसको हम कृष्ण की सेवाओं में लगा सकते हैं। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि काफी सोच विचार के बाद यवन राज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। बुरा अवसर है परंतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान का नाम लेना। कलयुग सबसे बुरा अवसर है। सत्ययुग में लोग लाखों साल जीते थे, भगवान का भजन करते थे, सोने के थाली में खाते थे, है ना। फिर द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, अभी कलयुग है। कलयुग बड़ा ही विचित्र युग है। त्रेता युग में बाप के सामने बच्चा कभी मरता नहीं था, परंतु अभी कितना भयंकर, बाप बैठे है, माँ बैठी है, बच्चा एक्सीडेंट, गाड़ी जोर से चलाता है और मर जाता है। तो इसके लिए ये कलयुग बड़ा ही विकट है, परंतु फिर भी इसका सही उपयोग भगवान के नाम का उच्चारण करने से इसका लाभ है। परीक्षित महाराज ने भी जैसे कलयुग आया तो उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में बड़े विकट परिस्थिति है, तो उन्होंने कलयुग को पकड़ा और मारना ही चाह रहे थे, तो उन्होंने शरण ली, तो उन्होंने उसको मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि अभी ये युग का टाइम है और इससे हरिनाम का प्रचार होगा। इसके लिए उन्होंने उन्हें चार जगह देकर छोड़ दिया और विशेष करके सोने में रहने के लिए जगह दी। तो प्रभुपाद ने पहले स्कंद के तात्पर्य में लिखा है कि सोना भी बुरा चीज है, परंतु यदि इसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो ये भी शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने कई जगह उदाहरण देकर कहा कि हर चीज का उपयोग हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो एक दिन प्रभुपाद जी बंबई में बैठे हुए थे और उनका अपना शेड्यूल था, रात को 1 बजे उठना और ग्रंथों को लिखना, और ये सबको पता नहीं था। तो एक चोर था, वो बराबर रात को देखता था वो कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर है और उनके हाथ में जो घड़ी है ये सबसे स्पेशल है। तो उसने बराबर 2-2.5 बजे, उन्हें लगा अभी सब लोग सोए हैं, प्रभुपाद की खिड़की से छलांग लगा कर वो प्रभुपाद के रूम में आ गया। और जैसे आया तो देखा
अरे जिनको चोरी करना उसको तो सोना चाहिए, ये जग कर क्या लिख रहे है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे थे, उन्होंने आया देखा, अरे स्वामी जी, प्रभुपाद ने पूछा बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा स्वामी जी आपके हाथ की घड़ी बहुत अच्छी है। बोले ले लो ये घड़ी। बोले कभी मैं चोरी करने के लिए जाता हूँ, पकड़ा गया तो लोग पीटते हैं, परंतु ये स्वामी जी ने तो मुझे स्वागत सत्कार किया है। जो घड़ी मैं चोर के लेने वाला था उन्होंने मुझे तुरंत दे दिया। फिर प्रभुपाद ने कहा इधर उधर क्यों चोरी करते हो, इधर मंदिर में ही रहो, सेवा करो। वो बोले चोर क्या सेवा कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा मैं जो ये लिखता हूँ, ये डिक्शनरी माइक में मैं बोलता हूँ, तो इधर कुत्ते भौंकते हैं और कुत्ते भौंकने की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होती है, तो इसको लिखने के लिए बड़ा तकलीफ होता है और तुमको रात को जागने की प्रैक्टिस है, तुम तो चोर हो, तो जो भी कुत्ते आते हैं उसको हकलने का काम तुम करो और इधर ही रहो, भोजन करो, प्रसाद खाओ, इधर ही रहो, क्यों इधर उधर चोरी करते हो। और प्रभुपाद का संग इसको मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाए, तो उसका चोर का भी जीवन बदल गया, वो उधर ही रहने लगा। बोले प्रसाद भी अच्छा है, रहना भी अच्छा है और सेवा भी मिल गई है, और अपनी ये फेवरेट सेवा है, रात को जगना, थोड़े कुत्ते को भगा दिया तो दिन भर खाना पीना फ्री है। तो वो रहते गया, धीरे धीरे सेवा करते गया, तो खाना पसंद है तो वो किचन में घुस गया और उधर सब्जी काटना करना, धीरे धीरे वो महाकुक बन गया और कुकिंग करते रहा। तो रोज कुकिंग बनाते थे, 9 बजे भक्त लोग आते थे, प्रसाद खाते थे। एक दिन 9 का 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। वो बोले आज अभी तक भक्त खाने के लिए नहीं आए, क्या बात क्या चल रहा है। तो ऊपर किचन से निकल के मंदिर में आया, अरे क्या हो रहा है क्या। तो मंदिर में देखा कि दीक्षा चल रहा है, प्रभुपाद जी कई विदेशी भक्तों को दीक्षा दे रहे हैं। तो इसने भी पूछा प्रभुपाद जी मुझे भी दीक्षा दो ना, मैं भी आपने इधर इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, अभी मेरा जीवन बदल गया है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, लाओ माला लेके आओ, आपको मैं दीक्षा देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास किधर माला है। प्रभुपाद ने अपनी जो माला जप कर रहे थे वही माला उन्होंने उनको दे दिया और वो माला लेके वो जप करना चालू कर दिया, भक्त बन गया और बड़े ही प्रेम के साथ वो सेवा करते रहा। रोज भगवान की सेवा में आते थे और प्रभुपाद ने दीक्षा देके उनका नाम दे दिया बड़ा हरिदास प्रभु, हरे कृष्णा। तो धीरे धीरे वो बड़े अच्छी सेवा करने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि आपको अभी ये जो प्रचार करने के लिए विदेश में जाना चाहिए, आप अपना पासपोर्ट बनाओ। तो वो बहुत बार पासपोर्ट ऑफिस में गए, सब कागज पत्र जोड़ा, परंतु एक चीज की कमी थी। वो पासपोर्ट ऑफिस बोलता था तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, और ये चोर था, इसका कोई नाम का ही पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो फिर वो प्रभुपाद के पास आया, बोले पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया अभी तक। वो बोले हमारे पिताजी का नाम नहीं। अरे क्या नाम नहीं, मैं तुम्हारा बाप इधर बैठा हूं ना नाम कैसे नहीं है, लाओ फॉर्म। लेकिन फॉर्म लिया, उन्होंने लिखा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, आपका पिताजी बाप है, साइन किया, उसका पासपोर्ट बन गया, देश विदेश में वो प्रचार करने चले गए। तो उसके बाद उन्होंने फिर आके बॉम्बे में ये इस्कॉन टेलीविजन बनाया और आज भी टाटा ग्रुप के साथ उन्होंने कॉन्टेक्ट करके राधा राज बिहारी, राधा श्याम सुंदर, हर घर घर में अभी भगवान दिखते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी थे, चोरों को भी भक्त बनाने की उनकी एक स्पेशल कला थी। तो एक काल कन्या जो है इसको भी उन्होंने भक्त बनाया, सेवा में लगाया। क्या भक्त जब बूढ़ा हो जाता है तो लोगों को लगता है अभी ये पक्का हो गया है, और जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसकी कीर्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्त कैसे मरेगा, आखिरी जीवन तक उन्होंने कैसे प्रयास किया, फिर उसके बाद उसकी कीर्ति और बढ़ती है। तो इस प्रकार बुढ़ापा भक्तों के लिए एक वरदान भी है, क्योंकि जो इंद्रिया को वश में करना बड़ा ही मुश्किल है वो धीरे धीरे उम्र के साथ सब शिथिल हो जाती है, तो उसके बाद उसका इंद्रियों में भोग में कोई मन नहीं रहता। तो डॉक्टर और जो भक्त है, जो भगवान के सेवक है, उनके लिए बुढ़ापा एक वरदान है, क्योंकि डॉक्टर जितना बूढ़ा होगा उसका अनुभव बढ़ते जाएगा और उसको दवा पानी उसकी सब इलाज उसका अच्छा होगा, और साथ में ही भक्त जितने बूढ़े होंगे उतना उसका जो अनुभव है भगवान के प्रति प्रेम है वो बढ़ते जाएगा। और फिर प्रभुपाद कहते कि भक्त कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार हर चीज का उपयोग कृष्ण के लिए उन्होंने किया, हमारा सिद्धांत ही प्रभुपाद ने बनाया। बुक आर द बेसिस, प्यूरिटी इज फोर्स, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज एसेंस। उपयोगिता नहीं करेंगे तो हमारा कुछ उपयोग नहीं होगा, हमको हर चीज का उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, जो का मंदिर बनाए, कितनी समस्या, कोर्ट में जाकर लड़ाई कर कर वो नायर को हरा कर प्रभुपाद ने मंदिर बनाया, उसमें सबको सेवा में लगाया, ईंट पत्थर मार्बल इसको जो लगाने वाले बनाने वाले सबको, और ऐसा मंदिर बना दिया कि हजारों लोग रोज आते हैं और दर्शन करते हैं। यमराज ने कहा ये देखो यमदूतो, जो कभी मन से भगवान का स्मरण नहीं करते हैं उसको मेरे पास लेके आओ। यमदूतों ने कहा अरे कोई पागल होगा तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता चलेगा उसका मन में क्या है, तो उसका क्या करना चाहिए। वो बोले ठीक है चलो, मन से नहीं तो वो कम से कम जो जिसके जिह्वा से भगवान का नाम निकलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भगवान का स्मरण करता है उनके पास आप फटकना नहीं, जो ये हरे कृष्ण नाम लेता है उसके पास भी आप जाना नहीं। फिर यमदूत ने कहा अरे कोई गूंगा होगा तो जिसको बोलना ही नहीं आता है उसका क्या करेंगे। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि जिसका सर भगवान के चरणों में कभी झुका नहीं है ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ। तो प्रभुपाद ने मंदिर बनाए, पहले लोग आते हैं फिर देखते हैं अरे कितना सुंदर है, फिर धीरे धीरे आते आरती चालू होती कीर्तन चालू होता है उसका हाथ ऐसा होता है आ हा हा बहुत सुंदर, फिर धीरे धीरे हाथ आगे आता है आ हा हा अच्छा है, फिर जब भगवान की आरती होती है तो हाथ जोड़ता है अरे बहुत सुंदर आरती चल रही है, फिर देखता है भक्त का चर वो झुक के प्रणाम करे, वो पूछता है ये क्या चीज है, वो बोले ये दंडवत प्रणाम है हृदय के साथ है, बोला मेरा भी हृदय हो ना दे तो मैं भी आप प्रणाम कर लेता हूँ। तो इस प्रकार नरक के द्वार से प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिर बनाकर लोगों को मुक्त कर दिया। हर चीज का उपयोग इसमें, जिन्होंने मिट्टी है जिसकी जगह है, जिसने ईंट लगाई है, जिसने पत्थर लगाया, जिसने इसको पानी मारा है मार्बल लगाया है, उस सब का उद्धार हो गया क्योंकि वो भगवान की सेवाओं में लग गए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने हर चीज का उपयोग कृष्ण की सेवाओं में किया, और इस प्रकार से प्रभुपाद ने हर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। नारद मुनि ने देखा कि ये नल कुंवर और मणिग्रीव ये अच्छे पिताजी की संतान है कुबेर की, परंतु इनका कार्य उल्टा हो रहा है, शराब पीकर मस्ती कर रहे हैं, तो इनका उपयोग क्या करना चाहिए, ये कपड़े नहीं पहनते तो फिर बिगर कपड़े वाला कौन है, बोले वृक्ष योनि है, और ये क्या होने चाहिए, बोले ऐसी जगह पर इनको फिट करेंगे जहां ये भगवान को देखते देखते इनके मन का सब चला जाएगा, जितनी भी वासनाएं है जितना भी इनका दुर्गुण है चला जाएगा, तो श्राप ही वरदान हो गया। उन्होंने नलकुवर और मणिग्रीव को कहा भाई आप इधर नहीं, चलो आप वृक्ष बन जाओ। फिर उन्होंने दंडवत किया, फिर कहा बन जाओ वृक्ष, कहा नंद बाबा के बाबा, नंद बाबा के घर में वो वृक्ष बन गए, और इस प्रकार उन्होंने नंद बाबा के घर में रहकर उधर रोज भगवान का दर्शन करते थे, और रोज वो लीलाओं को दर्शन करते भगवान एक बार आए, और फिर उखल बंधन जो हमारी सबसे स्पेशल लीला, उखल से भगवान ने खींचा और वृक्ष मुक्त हो गए। तो इस प्रकार श्राप ही वरदान है। यदि परीक्षित महाराज का भी हम देखते हैं, परीक्षित महाराज ने जो शमिक ऋषि के गले में सांप लगाया, भूख प्यास से बड़े व्याकुल थे, और श्रृंगी ने सांप दे दिया आज से 7 दिन में आप मर जाओगे, परीक्षित महाराज के मन में होती तो वो श्रृंगी को बुला के उसको फांसी दे देते, है क्या नहीं, आपने मेरे को ऐसे श्राप क्यों दिया, परंतु उन्होंने सोचा है भगवान की कृपा है, और उन्होंने उसका सही उपयोग क्या किया, कथा सुनने के लिए, और उनकी कृपा से आज हम ये कथा सुन सकते हैं। 5000 साल पहले उन्होंने अपना सोना चांदी हीरे जवाहरात अपने ड्रेस मुकुट सब छोड़कर कोपिन लगाकर गंगा के किनारे बैठकर एक ही प्रश्न पूछा, मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है और जो जीने वाले उनके लिए भी क्या है। उन्होंने एक ही उपाय, भगवान की कथा। तो इस कथाओं को सुनते सुनते परीक्षित महाराज शुद्ध हो गए और वो भगवान के धाम, कथा से धाम तक, भगवान के धाम में वो चले गए। तो बड़ा ही बहुत सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में है कि जिससे हर व्यक्ति को सेवा में लगाया और जो बुरे शब्द है, बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपाय किया गया। तो साथ में ये जो बसें आई थी, प्रभुपाद ने एक दामोदर संकीर्तन पार्टी चालू की थी और उसमें जो बस आई थी वो विदेशों से आई थी और उस बस से तमाल कृष्ण महाराज सभी जगह पूरे भारत में घूम फिर के प्रचार करते थे और सबसे ज्यादा बुक वितरण करते थे। तो और जितने भी मंदिर के भक्त थे वो उनको ज्वाइंट हो जाते थे, क्योंकि रोज नई नई जगह जाना और ग्रंथ वितरण करना, कीर्तन भजन कथा, उसको बड़ा आनंद आता था। मैं कुछ समय था कि उस व्यक्तियों का जैसे वीजा होता है वैसे उस बस का भी वीजा होता था। तो बसें विदेश से वापिस जाने वाली थी, तो प्रभुपाद ने सोचा कि अभी हमारा ये आंदोलन का प्रचार कैसे होगा और बस में पेट्रोल भी लगता है, खर्चा भी है, भक्तों को तकलीफ भी है। तो फिर उन्होंने राधा अष्टमी के दिन दिल्ली में लोकनाथ स्वामी महाराज को बुलाया, लोकनाथ जी आप गांव से हो, आप किसान हो, तो आप बैलगाड़ी से प्रचार कर सकते हो, तो बैलगाड़ी में बैठ के आप घर घर जाके इसके आंदोलन को प्रचार कीजिए। तो महाराज कहते हैं कि मैं तो इंजीनियर बनने वाला था, बड़े बड़े बस में घूमने वाला था, परंतु प्रभुपाद ने मुझे बैलगाड़ी में बैठा दिया और मैं बैलगाड़ी के साथ सबसे पहली परिक्रमा वृंदावन से द्वारका और फिर वहाँ से मायापुर, द्वारका से मायापुर तक हुई। तो इसमें बहुत सक्सेस मिला, तो प्रभुपाद ने कहा इसको कंटिन्यू करते रहो। तो फिर ये परिक्रमा चलती रही और प्रभुपाद जी इससे बड़ा प्रसन्न थे, इससे बुक वितरण होता है। आज भी ये जो पद यात्रा चलती है इसका वर्ल्ड में कभी कभी पहला नंबर आता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। इससे बुक वितरण सबसे ज्यादा होता है, गांव गांव में प्रचार होता है और चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो एक नगर और एक गांव में प्रचार हो रहा है परंतु उसके बीच में प्रचार कैसे होगा, तो ये पदयात्रा से होता है। तो पदयात्रा में जो बीच में भी है, कोई झोपड़ी लेके बैठा है, गांव के कोई गांव में भी नहीं है, कोई नगर में भी नहीं है, कहां भी नहीं है, तो उधर भी ये गौर निताई पहुंच जाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको भी ग्रंथ वितरण करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और लोग आनंद लेते हैं। और हर विदेशों में भी 108 देशों में ये पदयात्रा शुरू हो गई, मास्को से मास्को तक, मतलब रशिया से लेके फ्रांस तक ये पदयात्रा चलती रही। सबसे बड़ा ये अंतर है। और अभी हम यूरोप में गए थे तो उधर वो लोग क्या करते हैं, एक महीना छुट्टी होती है तो जितने भी भक्त है वो एक महीना स्पेशल छुट्टी लेके पदयात्रा का आनंद लेते हैं। और उनके पदयात्रा सवेरे निकलती है, दोपहर तक वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोई गांव में अलग जगह रहेंगे तो लोग आएंगे नहीं। प्रभुपाद ने पहले कहा था कि आप कुएं के पास रहो, परंतु विदेश में कोई कुआं है ही नहीं, तो फिर उन्होंने सोचा कि कुएं के पास नहीं मगर जहां लोग आते हैं वहां रहो। तो रेस्टोरेंट जिधर होता है, जिधर लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उधर वो लोग अपना जाके रथ लगा देते हैं। और जैसे ही शाम को भीड़ आना चालू हो जाता है तो सबसे पहले हमारे जो कौस्तुभम, ये जो अलग अलग नाटिका होती है जिससे कथक के द्वारा स्पेशल माताजी भरतनाट्यम करते हैं, और जो भी लोग आते हैं उनको पहले स्वीट प्रसाद दिया जाता है। और वहाँ का रेस्टोरेंट थोड़ा अलग होता है, हमारा रेस्टोरेंट में चाय पानी होता है, मगर के उधर के रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता है। हर आदमी अपना स्पेशल ग्लास, स्पेशल रस है क्या, नहीं उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो हमारे काम की चीज नहीं, उनका अपना रस पीते हैं और लोग नृत्य देखते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर धीरे से आधा घंटा हरि नाम पर और विशेष स्पेशल क्लास होता है। आप शरीर नहीं आत्मा हो और भगवान के आप अंश हो, भगवान का भजन कीजिए, फिर उनको हरि नाम का प्रचार किया जाता है, फिर लास्ट में सबके साथ कीर्तन नृत्य, लोगों को नाचना बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन होता है और फिर सबको प्रसाद बांटते हुए ऐसी उपज यात्रा गाँव गाँव में जाकर प्रचार करती है। तो जो लोग शराब पीने वाले भी है उधर भी ये पहुंचकर वो उनका उपयोग नहीं है, पर जब वो देखते हैं कृष्ण का रसपान करते हैं, चरणामृत पीते हैं, तो उनको लगता है परम दुष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना यम लब्ध्वा चापरम लाभम परम दुष्टवा निवर्तते। जब ये रस आ जाता है तो वो रस चला जाता है। तो ये भक्ति का स्पेशल रस है जिससे उनमें बड़ा ही उनको आनंद आता है। और इस प्रकार पद यात्रा नगर गांव हर जगह जा रही है। राधे श्याम प्रभु की हमारी कृपा से गए 23 साल से हरे कृष्ण दिंडी यात्रा देहू से हमारी चल रही है। ये सेंटिनियल से हमने शुरू किया था 96 में, अभी इसको 23 साल, इस साल 23 साल हो गए हैं, जो लाखों लोगों तक हरि नाम का प्रचार करते हुए। वैसे हमको लोग जमा करने पड़ते हैं, ये फेस्टिवल है, ये आइए, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, फिर भी लोग आते नहीं है, परंतु इगर बिगर लेटर से ही 2-3 लाख लोग श्री श्री राधा कुंज राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौ निताय की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो इस प्रकार ये रथ यात्रा पद यात्रा गांव गांव नगर नगर पहुंचकर प्रचार कर रही है। प्रभुपाद ने सबको सेवा में लगाया, किसको अलग अलग प्रकार से। तो ये दिंडी यात्रा हमारी लाखों लोगों तक प्रचार करती हुई, कृष्ण भावना का वितरण करती हुई, कई ग्रंथों को बांटती हुई, कई साल हमारे 5,000 से ज्यादा बुक सुंदर विश्वम्भर प्रभु ने वितरण किया। और देव दिंडी में अलग हमारे कम से कम 15,000-20,000 BTG इस दिंडी में हमारे चले जाते हैं लोगों के घर घर, और ये दिंडी हमारी चलती है। प्रभुपाद कहते हैं हमारी सेना पेट के बल पर चलती है, पाँव के बल पर नहीं, क्योंकि पेट में नहीं डालेंगे तो पाँव नहीं चलेगा। बराबर है क्या? नहीं, पेट में ही नहीं कूचे तो पाँव आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और ये पेट चलाते हमारे श्रीपाद सेवा प्रभु का है, दर्शन नहीं उनका। अरे श्रीपाद सेवा प्रभु इधर है, थोड़ा कोने में बैठे। अरे श्रीपाद सेवा प्रभु भक्तों को अच्छा प्रसाद प्योर घी का माल खिलाते तो भक्त बराबर चलते है। और इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जब शुरुआत हुई थी तो हमारे ज्यादा भक्त नहीं थे, 30-40 भक्त थे, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, अभी डबल हो गए, 200 से ज्यादा ही। अभी वो बोलते हैं हमारे पास व्यवस्था नहीं है भाई, अभी आप आ नहीं सकते क्योंकि इतना लोग बढ़ गए हैं। तो पेट के बल पर ये सेना चलती है, तो लोगों को प्रसाद बड़ा जरूरी है, प्रभु जी खिलाते हैं तो लोग चलते ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रभुपाद की कृपा से आंदोलन बढ़ रहा है। तो मैनेजमेंट की सेवा प्रभुपाद ने हमारे गोपाल कृष्ण महाराज को दी कि भाई आप वहाँ मैनेजमेंट करते हो तो ये मंदिरों का मैनेजमेंट करो। उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं पूरा पगार तो दे रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा आपका पैसा नहीं, आप मुझे चाहिए। तो यदि वो पगार जमा करके देते तो ज़्यादा से ज़्यादा उस जमाने में कितना $5,000 होगा, तो अभी तक ज्यादा से ज्यादा 2-5 लाख पगार हो जाता। और 5 लाख का भी यदि कैलकुलेशन हम करेंगे तो कई 10-20 करोड़ हो जाएगा। परंतु महाराज इस्कॉन में आके हजारों करोड़ के मंदिर महाराज ने बना दिए हैं, दिल्ली में ही 12 से ज्यादा मंदिर है। तो प्रभुपाद ने उनका उपयोग खास स्पेशल इसके लिए किया कि आप हमारे ग्रंथों का वितरण करो। गोपाल ग्रंथ नहीं है तो आप मेरे को मिलने के लिए आना नहीं। तो हमेशा एक ग्रंथ लेके आते थे हिंदी और अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार ये जो हम ग्रंथ देख रहे हैं, जो हिंदी में ये जो भागवतम है, सभी ग्रंथों में रशिया में महाराज ने रशिया में जाकर अंडरग्राउंड में जाके प्रेस लगाया और वहाँ जाके उन्होंने इस ग्रंथों को वितरण किया। इस प्रकार प्रभुपाद ने सबको सेवा में लगाया। क्रॉस मैदान में कथा चल रही थी प्रभुपाद का, और वहाँ एक दाढ़ी वाले बैठे थे साधु संत। प्रभुपाद ने कहा इनको ऊपर बुलाओ, ये नीचे क्यों है, ये तो हमारे साथ होने चाहिए। लोगों ने सोचा हम इतने अच्छे गोरे पान है, बिगर एकदम सेव है, इनको क्यों बुला रहे, मैं तो प्रभुपाद को कौन जान सकता है। तो उनको पता है कि हर व्यक्ति में क्या विशेषता है, तो उन्होंने फिर बुलाया रिचर्ड, क्या रॉबर्ट, क्या रिचर्ड आइए। तो फिर वो आए, उनको अच्छा लगा, स्वागत हुआ, भक्तों के साथ कीर्तन किया, प्रसाद लिया। फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में महाराज ने खोज की, राधानाथ महाराज ने सब गुरुओं को देखा, परंतु जब उन्होंने प्रभुपाद को देखा तो उनको लगा यही हमारे गुरु है, और उन्होंने अपना ढूंढना, गुरु ढूंढना फिर बंद कर दिया और पूर्ण शरणांगत होके उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वीजा खत्म हो रहा था तो उन्होंने कहा आप इस वृंदावन में नहीं तो उस वृंदावन, यूँ वृंदावन धाम में रहिए और वह आंदोलन को प्रचार कीजिए। महाराज ने कहा था कि मैं भारत के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, तो उन्होंने सबसे बड़ा ये युद्ध प्रचार राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, श्यामानंद प्रभु के द्वारा किया। और साथ में ही जैसे उनको याद आया कि वृंदावन में मैं बीमारी से कितना तकलीफ में था, तो जो भी बीमार है उसको तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने वृंदावन में हॉस्पिटल खोला और बोले बम्बई में लोग ज़्यादा भोगी है तो उधर रोगी होंगे ही, है क्या नहीं, तो उधर उन्होंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल खोला प्रभुपाद के नाम से। तो रोगी को दवा भी लगती है, साथ में हरे कृष्ण प्रसाद भी मिलता है। और मुस्लिम भक्त भी जो लोग जब वापिस जाते हैं तो वो भी हरे कृष्ण जप करते हुए जाते हैं, क्योंकि रोगी आदमी को कोई भी दवा बोलेगा तो वो करेगा, उसको बोलते हरे कृष्ण ये दवा है भाई, वो तो पीते हो मगर इसको भी थोड़ा जप करते रहो तो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हर आदमी ये इस नाम का, और हमेशा उधर कीर्तन चलते रहता है, भक्त लोग आते हैं, गाइड करते हैं, और धीरे धीरे वहाँ जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है वो इस रोग से भी और धीरे धीरे भवरोग से भी मुक्त हो जाता है, वो मंदिर में जुड़ जाता है। इसी प्रकार प्रभुपाद ने सबको सेवा में लगाया और उपयोगिता ही सार है इसका उन्होंने वापर किया। अभी थोड़ा ही समय बचा है, 2-3 मिनट, तो जगन्नाथ स्वामी आज श्यामानंद प्रभु का क्या है आविर्भाव, क्या तिरुभाव, तिरुभाव तिथि है। श्यामानंद इनका नाम दुखी, दुखी था, फिर दुखी कृष्ण बन गया। फिर जब उनको सेवा दी गई जीव गोस्वामी ने कि आप सेवा कुंज में झाड़ू लगाइए, वह आपको सेवा करने का आनंद आएगा, तो झाड़ू लगाते लगाते वह नित्य लीला आज भी है। आज भी वो कमरा है जो शाम को 6:30-7 बजे बंद होता है, सब श्रृंगार किया जाता है, और सवेरे जब वो खुलता है 5:30, सब आधा केला मिलेगा, आधा पान मिलेगा, आधा फ्रूट मिलेगा, और वो दिव्य नित्य लीला आज भी चल रही है। तो श्यामानंद जी झाड़ू लगा रहे थे तो उनको नूपुर मिल गया, राधा रानी का नूपुर। तो ललिता ने आया पूछा नूपुर है, हाँ है, दे दो, नहीं ये जिसका है उसको तो मिलाओ। तो फिर राधा रानी ने वो नूपुर लिया और उनके सर पर रखा, तो उनका एक स्पेशल तिलक और एक स्पेशल परंपरा भी बन गई। श्यामानंद प्रभु ने बहुत प्रचार किया, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, इनका एक स्पेशल था हमारे आचार्यों के बाद, इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया। और जगन्नाथ स्वामी का बड़ा ही मधुर लीला अभी भगवान का चल रहा है। तो कल ही हमने भगवान का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया, स्नान यात्रा भी हुई, तो थोड़ा सा एक जगन्नाथ की छोटी सी लीला कह के हम रुक जाएंगे, समय हो रहा है। जगन्नाथ स्वामी को हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ जगन्नाथ की सेवा करूं, और जो विशेष करके जगन्नाथ पुरी में रहता है तो हर एक को लगता है कि मैं कुछ ना कुछ जगन्नाथ की सेवा करना ही चाहिए। परंतु एक मुस्लिम भाई था, उसको तो मंदिर में जाने ही नहीं देते थे, मगर उसकी खास मिठाई की दुकान थी, तो उसके मन में आया कि मैं भी कुछ जगन्नाथ की सेवा करूं, और बड़े ध्यान पूर्वक वो सो गया। तो जगन्नाथ ने सपने में आकर कहा कि आप ऐसी मिठाई बनाओ जो आज तक किसी ने बनाई नहीं हो, और वो मेरे लिए कल लेके आना। फिर उसने पूछा आज तक जो किसी ने नहीं बनाई वो मैं कैसे बना सकता हूं, कोई बनाया ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊ। तो फिर जगन्नाथ ने कहा मैं ही आपको सिखाता हूं, देखो ऐसा मैदा लेना है, उसको ऐसे लंबा लंबा करना है और उसको घी में डालना है, तुपा तल ले ले, साकरत घोल ले ले, तूप में तलना है और शक्कर में उसको, शक्कर के पाक में उसको घोलना है, और वो बढ़िया चीज बन जाएगा, तुम कल सवेरे वो लेके आना। ये मुस्लिम था फिर भी जुम्मा तो जुम्मा नहाते, मगर उसने नहा लिया फटाफट, और नहा धो के चकाचक होके उसने जगन्नाथ के लिए बढ़िया सा, वो जैसे जगन्नाथ ने बताया था वैसे के वैसे उन्होंने सब आइटम बनाया, और वो लेके धीरे धीरे, आप तो जगन्नाथपुरी गए ना सब, कोई है जो नहीं गया? कोई नहीं है, देखो हमारा एक भी भक्त नहीं है जो जगन्नाथपुरी नहीं गया है, बहुत अच्छे। तो वो धीरे धीरे एक पायरी से ऊपर ऊपर जाते गया, जैसे ही चार पांच पायरी गया पंडा अंदर से आ गया, अरे भाई समझता नहीं, मुस्लिम हो अंदर कैसे आ सकते हो? वो बात चल रहा है इतने में दो कुत्ते आ गए, एक व्हाइट एंड ब्लैक, और उन्होंने इतने जोर से उस टोकरी को खींचा और वो मंदिर के अंदर चले गए। बोले आदमी नहीं आ सकते, कुत्ते कैसे आ गए? तो वो खींच के जैसे अंदर चले, अल्टर में ही चले गए वो दोनों, उन्होंने वो खींचा और वो टोकरी के साथ वो अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद वो पुजारी जैसे पीछे पीछे आ रहा था, कुत्ते की स्पीड थोड़ा जोर में होती है, तो वो पहुंच के वो आके देखा तो दोनों कुत्ते गायब है, और जो भी प्रसाद लाया था वो सब खा लिया है। थोड़े से बारीक बारीक जो दाने होते खाने के बाद, नहीं कि ऐसा है कभी हम भोजन करते हैं तो नीचे गिरते कोई कण, वैसे ये पापड़ी नीचे गिरा हुआ था। तो उस जो मुस्लिम भक्त था उसको बड़ा दुख हुआ। श्री श्री गौनिताय की जय, श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान की सेवा नहीं, कुत्ते ही खा गए, भगवान को तो भोग नहीं लगाया, वो आके सो गया। तो जैसे रात में सोया तो भगवान ने कहा, वो जो काले और व्हाइट, एक जगन्नाथ और एक बलराम हम ही थे, हमने ही वो खा लिया, और आपका जो ये स्वीट है ये बहुत बढ़िया बना है, मेरे हमारे पंडा जी आपको आने नहीं देंगे, इसके लिए आप मुझे रोज बुलाना, जैसे ही भोग बनेगा आप मुझे आवाज देना, आ जा और खा जा। तो जैसे हो आप मंत्र बुलाएंगे आ जा तो हम आ जाएंगे, और आप बोले खा जा तो हम सब खा जाएंगे, और इस मिठाई का नाम हो गया खाजा। आ जा और खा जा, जगन्नाथ स्वामी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्रीमद भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल।